25/1/1998 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 913 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું બોરીવલીમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 287
શ્રીમદ રાજચંદ્ર વચનામૃત પત્રાંક 913 ચાલે છે. ગુજરાતીમાં ચલાવ. બાદ મેં આપસ માં ચર્ચા કર રહે
હિન્દી
વાલા
હિન્દી
અચ્છા સુબે સમય સાર ચલતા હૈ હિન્દી ગુજરાતી બે લઉં છું. બરાબર ઝઘડો ખતમ. તે સન્માર્ગને ગવિષ્ઠતા પ્રતીત કરવા ઈચ્છતા તેને સંપ્રાપ્ત કરવા ઈચ્છતા એવા આત્માર્થી જનને પરમ વિતરાગ સ્વરૂપ દેવ સ્વરૂપ નિષ્ઠિક નિષ્પ્રહ નિર્ગ્રંથ ગુરુ પરમ દયામૂળ ધર્મ વ્યવહાર અને પરમ શાંત રસ રહસ્ય વાક્યમય સત્શાસ્ત્ર સન્માર્ગની સંપૂર્ણતા થતા સુધી પરમ ભક્તિ વડે ઉપાસવા યોગ્ય છે, જે આત્માના કલ્યાણના પરમ કારણો છે. એક વાક્ય એટલું લાગુ છે. ક્યા કહેતે હૈ કે યહ સન્માર્ગ કો જો જાનને કો ચાહતા હૈ. સન્માર્ગ મેને ક્યા કે આત્મા કા પરમ કલ્યાણ હોવે જિસ ઉપાય છે જીસ ઉપાય છે આત્મા કા પરમ કલ્યાણ હોવે ઇસ ઉપાય કો સન્માર્ગ કહેતે હૈ. સન્માર્ગ માને ક્યા? સર્ગ સન્માર્ગ મેને કોઈ ત્યાગ કરના વો સન્માર્ગ નહીં હૈ. કોઈ વ્રત કરના કોઈ સન્માર્ગ નહીં હૈ. કોઈ મંદિર મેં જાના સન્માર્ગ નહીં હૈ. કોઈ શાસ્ત્ર પડલાલના સન્માર્ગ નહીં હૈ. કોઈ માલા ફેરના જપ કરના કોઈ સન્માર્ગ નહીં હૈ. આત્મા કો આત્મિક શાંતિ મિલે, આત્મા કો આત્મા કા અમૃતમય સુખ મિલે, આનંદ અમૃત મિલે, ऐसी दशा जिसको प्राप्त होए, ऐसा उपाय को सन्मार्ग कहते हैं. सन्मार्ग दो शब्द है, सत मार्ग, सत मैंने और सभी प्रकार के दुख और क्लेश से रहित है. तो जैसा स्वरूप है क्लेश रहित दुख रहित, ऐसी दशा प्राप्त हुए इसका उपाय को सन्मार्ग कहते हैं. आत्मार्थी कैसे होते हैं? आत्मार्थी मैंने आत्मा का सुख का जिसको प्रयोजन है, आत्मा की शांति का जिसको प्रयोजन है, वो आत्मार्थी है. जैसे विद्या का प्रयोजन है वो विद्यार्थी है, ऐसे आत्मसुख का प्रयोजन है वो आत्मार्थी है. तो यहाँ आत्मार्थी की बात कहते हैं कि जो आत्मार्थी जन है वो ऐसे सन्मार्ग को खोजता है, जानने चाहता है और जानकर समझकर उस पर विश्वास रखना चाहता है कि यही सच्चा मार्ग है और ऐसे मार्ग को ऐसे उपाय को जो प्राप्त करना चाहता है. ऐसे ऐसे जिसके परिणाम हैं, ऐसे जिसके भाव हैं, उनको कहते हैं सन्मार्ग का चाहक, सन्मार्ग का इच्छा करने वाला आत्मार्थी जन. आत्मार से जन मैंने कोई त्यागी, कोई वैरागी, कोई पंडित, कोई विद्वान, ऐसे कोई बात नहीं है। तो आत्मिक सुख को चाहता है, पर इसके लिए जो सच्चा उपाय करना चाहता है वो आत्मार्थी है। ऐसे जीव, ऐसे मनुष्य को परम वितराग स्वरूप देव, कैसे, जो जिनेश्वर देव है, अपने जिनेन्द्र परमात्मा है, वो परम वितराग स्वरूप देव है। उनको राग नहीं, द्वेष नहीं, मोह नहीं। ऐसा जो परम वितराग स्वरूप देव है, ऐसा देव होने के लिए जो स्वरूप में स्थिर है, ऐसे निष्प्रह निर्ग्रंथ रूप गुरु जो अपने भाव लिंगी दिगंबर संत होते हैं, वो कैसे होते हैं कि बाहर में तो कुछ परिग्रह नहीं है, इसलिए वो परम निष्प्रह है, उसको कुछ चाहिए नहीं, और उस स्वरूप में स्थित है, आत्मा में लीन रहते हैं, दूसरा कुछ नहीं करते। आत्मा में लीन रहना ज्ञान ध्यान में, ये इसका काम है, और ऐसे इनके भाव होते हैं, इसका स्वरूप ऐसा होता है, और बाहर में और अंदर में किसी से लगाव नहीं। निर्ग्रंथ, ग्रंथ मैंने गांठ संबंध, किसी के साथ कोई संबंध नहीं रखेंगे, वही जिनेश पर आगे होकर के बनेंगे देव गुरु। और शास्त्र, शास्त्र हमारे कैसे हैं कि परम दयामूल धर्म व्यवहार है, इसमें कैसा व्यवहार है, परम दयामूल, परम दया जिसका मूल है, ऐसा जिसका धार्मिक व्यवहार है, और परम शांत रहस्य वाक्यमयी, आत्मा की जो परम शांति है, उस शांति को प्राप्त करने का जो रहस्य है, सीक्रेट है, ऐसे वचन, ऐसे वाक्य जिन शास्त्रों में है, उसको कहते हैं सत्शास्त्र, उसी का नाम है सत्शास्त्र। तो सत्शास्त्र दो बात करता है, एक तो आत्मा की परम शांति को कैसे प्रकट करना, और संसार के सभी प्रकार के दुख और क्लेश का कैसे नाश करना, इसका रहस्य जिसमें भरा है। और बाहर में जिसको परम दया है, अपने आत्मा की भी दया है और दूसरे आत्मा की भी दया है, ऐसे वचन जिसमें है, ऐसे सत्शास्त्र, देव गुरु और शास्त्र, ऐसे उत्तम है। देव भी उत्तम है, गुरु भी उत्तम है, और शास्त्र भी उत्तम है। जहां तक सन्मार्ग की पूर्णता नहीं होवे, वहां तक परम भक्ति द्वारा उपासना योग्य है, वहां तक उनकी उपासना करना, उसकी भक्ति भी करना, और वो जैसा कहते हैं ऐसा करना, उसको कहते हैं उपासना। उपासना माने क्या, कि देव गुरु शास्त्र के उपदेश के समीप अपना बर्तन रखना, उसको कहते हैं उपासना, और वही आत्मकल्याण के परम कारण है। ऐसे देव गुरु शास्त्र की भक्ति और उपासना कि हमारे लिए हमारा आत्मकल्याण का परम कारण है। तो बात आखिर में क्या है, कि ये बात है वो आत्मा का परम कल्याण करने की बात है, आत्मा को सुख शांति होए, इसी की बात है। इसके लिए जो कुछ करना है वो हमको करना है।
निर्ग्रंथ शब्द जो आयो ने एमां गांठ शब्द आयो तो कई कई गांठ है।
बड़ी गांठ तो मोह की है। किसकी है बड़ी गांठ? किसकी है? मोह की ग्रंथि। दर्शन मोह और चारित्र मोह दोनों प्रकार के मोह है। तो गांठ क्या करती है? जोड़ती है, संबंध करती है। ये शादी में करते कि नहीं? वो गठबंधन करते कि नहीं? करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आप दोनों का संबंध हो गया। पहले नहीं था, अलग अलग परिवार में थे, बड़े हुए फिर संबंध हुआ, तो उसका एक संकेत है उसमें। तो मोह से जीव संसार में दुखी होता है, क्लेशित होता है, जन्म मरण करके परिभ्रमण करता है। मनुष्य तो पचित ही होता है, बाकी बहुभाग एक इंद्री, बे इंद्री, त्रण इंद्री ऐसे अधो गति में, नीच गति में जन्म मरण जीव को करना पड़ता है, पर वहां बहुत दुख होता है। इधर भी सुख कम है, इधर भी आकुलता बहुत है, अनेक प्रकार की आधि व्याधि उपाधि की आकुलता बहुत है। तो इस सभी प्रकार के दुख और क्लेश से मुक्त करने का उपाय है, उसको सन्मार्ग कहते हैं। अगर जीव मनुष्य होकर के सन्मार्ग को नहीं ग्रहण करता है तो पशु पक्षी में तो सन्मार्ग ग्रहण करने का मौका है ही नहीं। मनुष्य में भी जैन धर्म के अलावा इस सन्मार्ग ग्रहण करने का मौका कहीं भी नहीं है। सभी विश्व के धर्म रूढ़िवादी है। आजकल तो जैनियों भी रूढ़िवादी हो गए हैं। मूल जैन धर्म है वो तो लुप्त प्राय है, वो तो लोपायमान हो गया है। कुछ एक ऐसे ज्ञानी पुरुषों ने ये बात कही कि मूल धर्म है वो आत्मकल्याण का, इसका तरीका ही कोई अलग है। लोग क्या समझते हैं कि मंदिर जाए, व्रत करे, कुछ त्याग करे, या हम कुछ मुनि बन जाए, दीक्षा ले ले, वो ले ले, वो कर ले, वो कर ले, उसको धर्म मानते हैं। वास्तव में ऐसी बात नहीं है। पूछो तो कुछ सबको सर तुम्हें, वास्तव में ऐसी कोई बात नहीं है। वास्तव में अपनी समझ को ठीक करना और समझ पूर्वक अभिप्राय को ठीक करना, यहाँ से सन्मार्ग चालू होता है। इसके पहले जो कुछ त्याग व्रत कर लेते हैं उसमें कोई धर्म वर्म की प्राप्ति नहीं होती है। कसाई भी दूसरे पदार्थ से संबंध करने से होता है ना। कसाई कब होता है? दूसरा पदार्थ का संबंध करने से कसाई होता है ना। तो संबंध मैंने गांठ हुई, और कसाई है वो भी मोह की संतान है। बिना मोह किसी को कसाई होता है ऐसा तो बनता नहीं। किसी गुस्सा आता है या लोभ होता है, क्रोध मान माया लोभ चार प्रकृति है कसाई की। तो मोह के बिना तो होता नहीं, चारों में से कोई भी एक हो, दो हो, चार हो, मोह के बिना तो नहीं होता ना। मोह होता है तो होता है। तो मूल में तो ग्रंथि मोह की है, फिर इसके संतान है सब। जितने भी जीव के दूषित परिणाम हैं वो सब मोह से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए जिनेन्द्र भगवान की जो नीति है, कार्य पद्धति है, उसमें सबसे पहले मोह को कैसे खत्म करना वही बात चलेगी, वही बात कहेंगे वो। और मोह है वो भी एक ना समझ के सिवा और कुछ नहीं है। सही समझ में मोह नहीं होता है, समझ की गलती से मोह होता है। क्यों? जगत में जीव और परमाणु जड़ और चेतन दो ही जाति के तो पदार्थ है। हमारी आत्मा है वो चैतन्य स्वरूपी ज्ञान स्वरूपी है, एक तत्व है जिसको हम जीव तत्व कहते हैं, बाकी को जड़ और अजीव तत्व कहते हैं। मुंह में क्या होता है कि ये मेरा है, ये मेरा, ये मेरा, अब कौन किसी का है, कौन किसी का है। सभी का संयोग नया होता है और वियोग निश्चित रूप से हो ही जाता है। नया संयोग होता है और वियोग निश्चित रूप से सबका हो ही जाता है, होने में हुए बिना रहने वाला है नहीं। अब जो बीच में एक संयोगिक परिस्थिति रही, इसमें जीव उतनी पकड़ करता है कि ये मेरी चीज है, मैं उसको नहीं छोड़ सकता और मैं इसको छोड़ने वाला नहीं। लेकिन इसका काल जब पूरा होता है तो डिपार्टमेंट हो ही जाता है। जैसे ट्रेन के टाइम पर ट्रेन छूट जाती है, प्लेन के टाइम पर प्लेन, टाइम ऑफ डिपार्चर है वो तो। ऐसे सबका अराइवल का भी टाइम है और डिपार्चर का भी टाइम है। अराइवल के टाइम में संयोग होता है, डिपार्चर के टाइम में वियोग होता है, और दोनों बात होने वाली है ही संसार में। जीव मोह के कारण से दुखी होता है, कोई बात देव समझाते हैं, जिनेश्वर देव समझाते हैं, कोई बात अपने गुरु समझाते हैं, वही बात अपने सत्शास्त्र समझाते हैं। अपनी समझ को ठीक करे उसी का नाम धर्म है। समझ की गलती रहने से दुखी हो इसी का नाम अज्ञान है, और सही समझ से शांत निराकुल सुख और आनंद सहित जीवन चले उसी का नाम ज्ञान है। ज्ञान और अज्ञान में क्या डिफरेंस है, ज्ञान ज्ञान से सुखी होते हैं और अज्ञान से दुखी होते हैं, और कुछ नहीं है। दोनों बात निश्चित है ऐसा समझ करके हम बस में ट्रेन में बैठने के लिए तकरार करते हैं, क्लेश करते हैं, लेकिन डिपार्चर का टाइम अब होते हैं तब क्या करते हैं, बस को पकड़ करके रखते हैं, ट्रेन को पकड़ करके रखते हैं कि हमको नहीं जाना है। कोई बिठाएंगे तो बैठने वाले नहीं है, चले जाएंगे। आगे से ही मालूम है तो अभी क्लेश क्यों करना, क्यों दुखित होना कि नहीं होना चाहिए। जियो तो समझदारी से, जैसे सुख शांति बनी रहे, इस तरह से जीवन में सुख शांति आनंद बना रहे, वो जीने का तरीका कैसे है वही हमारे देवगुरु शास्त्र हमको बताते हैं। हमें उसी के कहने के अनुसार चले तो हम सुखी हो जाएंगे, पर ना दुखी तो हो ही रहे हैं, क्या हो रहे हैं, दुखी तो हो ही रहे हैं। यहाँ पर एक स्मरण संप्राप्त हुई गाथा लिख करके इस पत्र को संक्षेप करते हैं, यानी उपसंहार करते हैं इस पत्र का। वो गाथा है, कोई सत्शास्त्र की गाथा है। भीषण नरई गई है, तिरई गई है, कुदेव मणु गई है, पत्तोसी तिव दुखम भाव ही जीर्ण भावना जीव। क्या कहते हैं, भयंकर नरक गति में, शब्दार्थ क्या है इसका, भयंकर नरक गति में ये जीव तो तीव्र दुख को प्राप्त हुआ, तिर्यंच गति में भी तीव्र दुख को प्राप्त हुआ, और माठी मैंने हल्की नीच देव गति में तथा नीच मनुष्य गति में भी तुम तीव्र दुख को प्राप्त हुआ। वो नीच गति यहाँ दो मैं नीच गति क्यों लिया है कि जो ज्ञानी है उनको तो नरक गति और तिरीच गति प्राप्त नहीं होती, उनको दो ही गति मिलती है, एक मनुष्य गति और एक देव गति, वो भी उच्च कोटि की, वो नीच कोटि की नहीं होती है। नीच कोटि के मनुष्य और नीच कोटि के देव बहुत दुखी होते हैं, तो बहुत दुख और क्लेश में ही उसका जीवन पूरा हो जाता है।
दुख का कारण
ना समझ, अज्ञान, सही समझ का अभाव, बस वही दुख का कारण है, दूसरा कोई दुख का कारण है ही नहीं। सच्चा ज्ञान सच्ची समझ से कभी दुख होता नहीं, इसलिए हम स्वाध्याय में इस बात को बार बार दोहराते हैं कि जब जब जीव को दुख होता है तब तब उसको उसी वक्त अपने आप को इस तरह से लेना चाहिए कि मेरे अज्ञान के कारण से मैं दुखी हो रहा, मेरी नासमझ के कारण से मैं दुखी हो रहा हूँ। ज्ञान कभी दुख का कारण होता नहीं, ज्ञान एकांत सुख का ही कारण बनता है।
मंत्र
ये सिद्धांत है, वस्तु वस्तु स्वरूप है। देखिए हमारे सभी आत्मा में शक्ति रूप से सुख बहुत भरा है। कितना सुख भरा है कि जिसकी कोई हद नहीं है, ऐसा बेहद सुख, असीम सुख भरा है, फिर भी हम दुखी होते हैं क्यों? हमारी निजी संपत्ति जो है वो अनंत सुख स्वरूप है। आत्मा माने सुख का, अनंत सुख का भंडार। क्या आत्मा माने अनंत सुख का भंडार? ऐसा अनंत सुख का भंडार दुखी क्यों होता है? जब इसके घर में इतना सुख भरा है वो दुखी क्यों होता है? कि वो अपने स्वरूप को भूल जाता है। तब कोई अरबपति यानी बेहद संपत्ति वाला भीख क्यों मांगता है? उसको वो पागल हो गया कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो भिखारी हूँ, इसलिए मुझे भीख मांगना चाहिए। तो ज्ञानी उतना ही कहते कि देख तू भिखारी नहीं है, तेरे घर में बहुत लक्ष्मी बहुत संपत्ति भरी है, तो क्यों पागलपन करता है, क्यों दुखी होता है? ऐसे ही संसारी जीव को हमारे देव गुरु शास्त्र वही कहते हैं कि संसार में तो दुखी होता है, यही कारण है कि तेरे में जो तेरा आनंद सुख है इसका पता तुमको नहीं है, तेरी संपत्ति से तुम खुद ही लापता हो, इसलिए तुम दुखी हो, दुख का दूसरा कोई कारण है नहीं। पर जब अपने सुख स्वरूप को भूला तो उसने क्या पकड़ा कि मैं फलाना मैं फलानी, क्या पकड़ा? मैं फलाना और मैं फलानी, स्त्री होती है तो फलानी, पुरुष होता है तो मैं फलाना, पर इसलिए ऐसा 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 होना जरूरी है। पर अगर इसलिए ऐसा नहीं होता है तो हम मंजूर नहीं करते, वो मंजूर नहीं करते, उससे आकुलता होती है, उसे दुख होता है। वास्तव में हमारा शरीर भी यहाँ हम छोड़ के जाने वाले हैं, अगर हमारा स्वरूप होता तो छोड़ के नहीं जाते, लेकिन हम रोज देखते हैं कि कुछ कोई ना कोई शरीर छोड़ करके इसकी आत्मा चली जाती है। तो इसलिए हम आत्मा हैं, वो बेसिकली जो हमारी गलती है वो वहाँ से हुई है, हम एक आत्मा हैं। तो फिर ये संसार क्या है, ये संबंध क्या है, मैं कौन, ये मूल बात समझनी जरूरी है। और मैं कैसे हुआ, ये मनुष्य में कैसे हुआ, और मेरा असली स्वरूप क्या है, ये मनुष्य हुआ यही मेरा असली स्वरूप है या मेरा असली स्वरूप कोई और है, और किस कारण से ये मेरे संबंध है जो संबंध मान करके मैं दुखी होता हूँ। तो समय सार है, इसी कारण से एक नाटक की पद्धति में लिखा गया ग्रंथ है। दिगंबर संप्रदाय का एक महान शास्त्र है समय सार। किस पद्धति से लिखा गया है? नाटक की पद्धति से। यह जीव इस संसार के नाटक में तेरा भी एक रोल है। क्या है तेरा एक रोल है? तो एक एक्टर बनकर के स्टेज पर आ गया है, एक्टर बनकर के स्टेज पर आ गया। तो तुम जो रोल तुमको दिया गया है उसको अच्छी तरह निभाना, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तुम वास्तव में एक्टर नहीं हो। वास्तव में तू एक्टर नहीं हो। क्यों? कि नाटक में तो राजा भी बनेगा और भिखारी भी बनेगा, लेकिन न वास्तव में तुम राजा है न वास्तव में भिखारी, तुम तो जो है सो है। ऐसे इस जीव संसार के स्टेज पे आया तो सचमुच मान लिया, जो रोल दिया वही सचमुच मान लिया। ये तो एक नाटक है और सभी को अपना अपना रोल पूरा करना है। क्यों? कि इसका प्रारब्ध लेकर के हम आए हैं। हम क्यों आए? ये नाटक करने को लिए क्यों आए? कि हमारे जो पूर्व कर्म हैं वो पूर्व कर्म ने हमको ये संसार के स्टेज पर जन्म दे दिया। चलो तुम इसके घर पे पैदा हुआ, फिर तुम बड़ा हुआ, फिर तुम्हारा ये सब प्रकार के अनेक प्रकार के समन्तन पे। वास्तव में तुम एक जीव हो, वास्तव में तुम फलाना फलाना नहीं हो। तो प्रारब्ध अनुसार तुम खेल खेलो, मगर ऐसा मत मान करके बैठ जाओ कि मैं सचमुच में ऐसा ही हूं, वरना दुखी हो जाओगे। पर उसी को नाटक के रूप में देखा करोगे तो तुमको भिखारी का रोल आएगा तो भी दुखी नहीं होगा, और राजा का रोल मिलेगा तो भी तुम सुखी नहीं होगा, क्योंकि तो एक रोल है। राजा का पाठ मिला तो अच्छे अच्छे कपड़े पहने, भिखारी का मिला तो फटे टूटे पहने। इसलिए हमको क्या हो गया कि कुछ नहीं, क्योंकि हम तो ऐसे है ही नहीं मूल में। मेरा और नरक गति में भी बहुत गया, इसलिए अब तो जीन भावना कैसा है, मैं जीन स्वरूपी आत्मा हूं। जीन भगवान जैसे परम शांत रस से परिणमन होकर के स्वरूप में स्थिर हो गए, वह परम शांत स्वरूप मेरा जीव का है। ऐसी चिंतना, ऐसा चिंतन करना, ऐसी भावना भाना, उसी को कहते हैं जीन भावना। जीन भावना कहो या निज स्वरूप की निज भावना कहो, एक ही बात है। ऐसा ऐसे भाव, ऐसा चिंतन तू कर, ऐसा ऐसा अपने मूल स्वरूप को तू संभाल। भूल गया है उसको तू संभाल ले। एक दृष्टांत है बहुत अच्छा। हम कलकत्ता में सुबह घूमने को जाते थे, एक वेदांति आता है, गोसाल भाई के मित्र है, वो कभी कभी कहीं बातें सुना देता है, लेकिन ये अच्छी है कि एक खेडूत का लड़का था, खेती करने वाला, उसको सर्प ने काटा, लड़का मर गया, सर्प के काटने से लड़का मर गया। एक दो आदमी ने देखा कि सर्प काट कर के लड़का को खत्म करके चला गया। अब क्या करें कि इसके बाप तो इधर खेत में ही काम करता है, नहीं इधर उधर होगा। उसने ढूंढा तो कोई पेड़ के नीचे एक खटिया पे सो गया था, बहुत खराब स्थिति में, तुम जल्दी 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 चलो, उठो उठो जल्दी चलो तुम जी। उसको मर गया ऐसा नहीं बोला, क्योंकि उसको शौक लग जाए इसलिए, क्योंकि मेरा लड़का मर गया है। उसको क्या कि बीमार हो गया है, ऐसा करके उनको ले आया। लड़का लेटा हुआ था, उन्होंने देखा कि ये तो खत्म हो गया है, पता भी चला कि सर्प ने काटा है इसलिए मर गया है। उसको कुछ हुआ नहीं
जी।
उसको जो कुछ होना चाहिए लड़का मर जाने से, जो दुख होना चाहिए वो दुख नहीं हुआ
जी।
तो सबको आश्चर्य हुआ, करे ये क्यों रोता नहीं है, जिसका लड़का मर जाता है वो तो रोने लग जाता है, ये तो बिल्कुल रोता नहीं है, क्या बात है। उन्होंने पूछा कि भाई आपको कुछ होता नहीं क्या, तो मैं जवाब नहीं दे रहा था। क्योंकि क्या सोचते हो तुम, तुमको बताओ ना, ये लड़का मर गया है तुम क्यों नहीं रोता है, तुम्हारा लड़का मर गया तुम रोता नहीं है, तुम क्या क्या विचार करता है, क्या चिंतन होता है तुम। तो मैं सही बात बताऊं तुमको, के बताओ कि मैं नींद में उधर सोया हुआ था तो मुझे एक सपना चल रहा था। स्वप्न में मैं एक बड़ा राजा था, क्या था, एक बड़ा राजा था, मेरे साथ तो रानियां थी, एक से एक सुंदर, सात सुंदर रानियां थी मेरे, और सातों को एक एक लड़का था, ये भी इतने राजकुमार अच्छे अच्छे थे, और मैं बहुत अपने आप को सुखी मानता था। देखो मैं बहुत बड़ा राजा, मेरी ये रानियां, ये मेरे राजकुमार, आप लोगों ने मुझे जगा दिया, तो मेरी तो सातों रानियां मर गई और सातों राजकुमार भी मर गया। मैं इसको रोऊं या इसको रोऊं, ये एक लड़का को रोऊं, मैं इसको रोऊं, किसको रोऊं मैं, तुम ही बताओ। अरे मेरा तो दिमाग नहीं काम करता, कि आप लोगों ने मेरा सुख को क्यों लूट लिया, मुझे जगा करके मेरा सुख को तुमने लूट लिया। देखो बात सही थी क्या, वो स्वप्न था। तो इसने बोला कि ये भी एक स्वप्न है, ये भी एक स्वप्न है और कुछ है नहीं, आखिर में जीव यहाँ आया है, कहीं और चला जाएगा, बीच का जो स्वप्न है वो कुछ काल में समाप्त हो जाएगा। अरविंद भाई ये हमारा जो संसार है ये वाक्य तो वाक्य ही स्वप्न है, इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि ये संसार है तेरा स्वप्न है।
भूतकाल तो सपने जैसा नहीं रहता है, लेकिन वर्तमान और भविष्य नहीं आता।
तो वर्तमान जो है वो भूतकाल नहीं बनेगा क्या,
बनेगा ये दुनिया में,
और भविष्य है वो भूतकाल नहीं बनेगा क्या, क्या बनेगा,
बनेगा।
तो जब बनेगा तब स्वप्न है, तो अभी से नहीं मानो ना, इसमें क्या आपत्ति है। ऐसा सबको होता है, संयोग कुछ होता है राजी राजी हो जाता है, वियोग होता है दुखी दुखी हो जाता है, दोनों में कल्पना करता है और भूलता है कि मैं एक जीव हूं, वास्तव में किसी से मेरा कोई संबंध है ही नहीं, होता तो हमेशा रहता लेकिन हमेशा कोई संबंध किसी का रहता है ही नहीं। तो दुखी होने का कारण को भी ज्ञानी दिखाते हैं और सुखी होने का कारण भी ज्ञानी दिखाते हैं। अब पसंदगी आपकी है, दुखी होना तो ऐसे चलो, सुखी होना तो वैसे चलो, कोई जबरदस्ती नहीं है। ज्ञानी जबरदस्ती नहीं करते, ऐसा क्यों नहीं करते, वो मत ज्ञानी नहीं करते, वो आपकी मर्जी की बात है, क्योंकि ये गुरु निष्प्रह है। गुरु कैसा बताया, निष्प्रह बताया। इसको कोई स्प्रह नहीं, सही बात करेगा, मानना नहीं मानना सब स्वतंत्र है। वो भी गुरु भी जानता है कि मानेगा तो भी स्वतंत्र रूप से, नहीं मानेगा तो भी स्वतंत्र है। हम भी बहुत बार भगवान के जिनेन्द्र परमात्मा के समो शरण में उनकी दिव्य ध्वनि सुनने को गए हैं, लेकिन हमने मानी नहीं इसकी। तो भगवान ने कोई हमारे पे जबरदस्ती तो नहीं किया, क्यों? कि वो परम वितराग स्वरूप देव है, आंख उठा करके भी किसी के सामने नहीं देखते। हमारे जो जिनेन्द्र परमात्मा है वो आंख उठा के भी किसी के सामने, कौन मुझे प्रणाम करता है या नहीं करता है, कुछ नहीं देखते। वो अपने सुख स्वरूप आत्मा में ध्यानस्थ अवस्था में लीन रहते हैं, बस उनको कोई देखने की कोई अपेक्षा भी उत्पन्न नहीं होती। ये मुझे प्रणाम करता है इसलिए मेरा भक्त है, ऐसा भी कभी देखता नहीं। और जो मेरे को प्रणाम नहीं करता है इसलिए मेरा भक्त नहीं है, वो भी ऐसा वो देखता नहीं है, उसको तो वितरागता है। जगत के सभी जीव स्वतंत्र हैं, हम किसी के कोई हमारे बंधे हुए नहीं है कि किसी को हम ऐसा करें तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो, ये बात होनी नहीं चाहिए। अपने काम में लगे रहो, बस अपना आत्म कल्याण के काम में लगे रहो, और इस मनुष्य भव मिला है तो आत्म कल्याण करके आगे सन्मार्ग में बढ़ो, तो कहीं भी दुख नहीं पाओगे, वरना कहीं सुख मिलने का कोई जगह है ही नहीं, कोई अवसर नहीं है, कोई प्रसंग नहीं है। अपने स्वरूप की भावना भाना कि जिससे वैसे अनंत दुखों का आत्यंतिक वियोग होकर के परम अव्याबाद सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाए, बस। इसलिए सभी प्रकार के दुखों का नाश हो करके अपने बाधा रहित सुख संपत्ति जो हमारे आत्मा में भरी है उसका अनुभव उनको हुआ करें, ऐसा उपाय हमको ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ इस पत्र समाप्त होता है, आखिर में लिखा है ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ऐसे पत्र का विषय तो ऐसा था कि किसी मुमुक्षु को शारीरिक पीड़ा रोग से बाधा हुई थी, फिर भी वो शांति से आकुलित नहीं हो करके उस हृदय को वेदता था, अनुभव करता था। तो जो रोग है पीड़ा है वो तो प्रत्यक्ष दुख का कारण है, फिर भी जिसको सही ज्ञान होता है उसको रोग की पीड़ा का भी दुख नहीं होता है, वो कैसे? वो बात दिखाने के लिए उन्होंने ये लंबा चौड़ा पत्र लिखा, बहुत सी बातें लिखी, आखिर में एक शास्त्र की गाथा लिख करके कहा कि जिसको सुखी होना है उनको हमारे जो देवगुरु शास्त्र है उनकी बात को समझना है, और भक्ति से उनकी बात को समझना है, उपासना करना है, तो ये चारों गति का दुख नहीं होगा। संसार में दुख कितने प्रकार के हैं? असंख्य प्रकार के हैं। कितने? रोग करोड़ों अरबों प्रकार के तो रोग है, और उपाधि और टेंशन उसका भी इतना ही प्रकार है, और जन्म होता है तब जीव बहुत दुखी होता है, और जब मृत्यु होता है तब भी जीव बहुत दुखी होता है। जन्म मरण के बीच में जो आयु भोगता है, उस आयु से भोगते भोगते कई प्रकार के रोग में, कई प्रकार के टेंशन में, तनाव में, अनेक प्रकार के दुख को भोगता है। ये सभी प्रकार का दुख से मुक्त होना है तो अपना आत्मस्वरूप का आत्मज्ञान करना वही सन्मार्ग है। आत्मज्ञान करना उसी को ही सम्यक दर्शन कहते हैं, उसी को ही सम्यक ज्ञान कहते हैं, उसी को ही सम्यक चारित्र कहते हैं। वही एकमात्र सन्मार्ग है और वो सन्मार्ग से सभी प्रकार का दुख से जीव मुक्त हो जाता है। जैसे हमारे जिनेन्द्र परमात्मा है, उसको जन्म का दुख है कि नहीं? वो उसका जन्म नहीं होगा, उसकी मृत्यु नहीं होगी, उसको रोग नहीं होगा, कोई आदि व्याधि उपाधि नहीं होगी। हम उसका मंदिर बना करके उसकी स्थापना क्यों करते हैं? ये हमारा आदर्श है, ये हमारा गोल है। वो भी हमारे जैसे पहले संसारी थे, संसार के दुख भोगते थे, जन्म मरण करके परिभ्रमण करते थे। इनको भी कोई सच्ची बात कहने वाला मिल गया ज्ञानी, वो सच्चे रास्ते पे चल करके जिनेन्द्र परमात्मा हो गए। हम भी चाहे तो हो सकते हैं, हम भी चाहे तो हो सकते हैं, लेकिन हमें हमारा जो समझ है उसको ठीक करनी पड़ेगी। वर्तमान भूमिका जो गृहस्थियों की है, हम लोगों की है, वो समझ ठीक करने की भूमिका है, दूसरी कोई भूमिका नहीं। हमारी जितनी भी गैर समझ है, ना समझ है, उसको हम सत्संग के दौरान ठीक करें, बस उतना ही करने का काम है। ऐसा करने से हर हालत में हमको दुख नहीं होगा, हर हालत में हमको दुख नहीं होगा, वरना किसी भी हालत में हम सुखी नहीं हो सकते। आप बताइए एक बीजी संसार के मनुष्य को कि आप सुखी है क्या? वो ना बोलेगा, हमको तो ये है, हमको तो वो है, हमको तो वो है, हमको तो वो। यही बात है, दिखेगी संसार में सर्व प्राणी दुखी ही दुखी दिखने में आते हैं। लोग जिसको सुखी कहते हैं, वो वास्तव में उसको पूछो तो ना बोलेगा, मैं सुखी नहीं हूं। बस इसका कारण क्या? अज्ञान, सही समझ नहीं है, सही समझ का अभाव, ये एक ही कारण है। तो ये स्वाध्याय सत्संग है वो इसके लिए है। इसमें कोई बात जबरन नहीं है कि आपको यह करना है, वो करना है, ऐसा करना है, फैसा करना है, वो बात नहीं है। बात उतनी है, आप ठीक करो, आप अपनी समझ को ठीक करो, उसके लिए जिज्ञासा रखो, दुखी होने का बंद हो जाएगा। पर्पस जो है, हेतु है, वो एक ही, दुख नहीं होना और सुख होना, और वो भी सही रास्ते से, आर्टिफिशियली नहीं कोई बात है। इसी कारण से इस प्रकार के तत्व ज्ञान में कोई भी जीव रस लेता है। ऐसा नहीं होता कि फलाना संप्रदाय वाला ही इसमें रस लेवे, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी संसार दुख से दुखी है और छूटने का जिसको भाव हुआ है दुख से, उसका उपाय इलाज खोजेगा और खोजते खोजते उसको यहाँ आना पड़ेगा। कई कैसी बात ये है कि जिससे हमारे कोई दुख नहीं हुए और सुख हुए। अब संसार में भी क्या है कि जीव कुछ भी करता है वो सुखी होने के लिए करता है। किसी को भी पूछो, एक चींटी है, वो कहीं भी जाती है तो क्यों जाती है? सुखी होने। उन्हें तो कहीं मीठी सुगंध आती है, कहीं भी एक शक्कर का दाना भी पड़ा है वहाँ उसका खिंचाव होगा, तो शक्कर में सुख उसको मिलेगा नहीं मिलेगा दूसरी बात है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति क्यों है? सुख के लिए। और मनुष्य के सुख के लिए। यहाँ पर वही एक ही मुद्दा पर, एक ही पॉइंट पर सारा आगमों का तत्व ज्ञान का विस्तार है, सारा जिनेन्द्र और गुरु के उपदेश का विस्तार भी इसी मुद्दे पे है। लेकिन यहाँ विशेषता वो है कि साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है, वस्तु के स्वरूप को वैज्ञानिक तौर से समझाते हैं और जीव को सुख दुख कैसा कैसे होता है उसकी सही समझ देते हैं। अगर जीव इसको समझता है तो सुखी हो जाता है, नहीं समझता है तो संसार में दुख तो सभी को है ही। वही तो लिया गया था मैं कि हे जी तुमने चारों गति में बहुत दुख भोगा, अभी ये दुख से छूटने के लिए तुम जिन भावना को बना, जैसा हमारे जिनेश्वर देव बने हैं ऐसा ही हमको बनना है। एक गाथा लिया है आगे के पत्र में, 5 मिनट है। देह जीव एक रूप लगता है अज्ञान के कारण, देह और जीव एक रूप लगता है अज्ञान के कारण, और यही अज्ञान के कारण से जीव की प्रवृत्ति बस इसी के अनुसार चलता है। जीव की उत्पत्ति मैंने जन्म, रोग शोक दुख मृत्यु देह का परिणाम है, वो देह का स्वभाव जीव पद में मालूम पड़ता है कि मेरा होता है, वास्तव में ऐसा है ही नहीं। ऐसा जो अनादि का अज्ञान रूप मिथ्यात्व भाव ज्ञानी के वचन से दूर हो जाता है, क्या होता है ऐसे ज्ञानियों के वचन से अज्ञान दूर होता है। भासे जड़ चैतन्य नो प्रगट स्वभाव भिन्न, भासे मैंने लगता है, जड़ और चैतन्य का भिन्न भिन्न स्वभाव लगता है, तब दोनों जीव अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, और अपने स्वरूप में जो स्थित हुआ वही जीन हुआ, वही जिनेन्द्र परमात्मा बन गए। एक पंक्ति में 903 नंबर का पत्र लिखा है, प्राणी मात्र का रक्षक, बंधव मैंने मदद करने वाला, और हितकारी मैंने हित का कल्याण का करने वाला, ऐसा कोई भी उपाय हो तो वह वितराग देव का एक धर्म ही है और कुछ नहीं है। नहीं है तो धर्म मैंने कोई रूढ़ी रिवाज अंधश्रद्धा नहीं है, उन्होंने जो सही सुखी बनने का उपाय बताया उसी का नाम धर्म कहने में आता है। वत्थु सहावो धम्मो, आत्मा का जो स्वभाव है वो धर्म है, दूसरा कोई धर्म है ही नहीं।